प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बाइबल की मार्गदर्शक रूपरेखा देखेंगे। पवित्र शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है और इसे एक अनोखी पुस्तक क्यों कहा गया है और इसे परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन क्यों कहा जाता है, इन बातों पर विचार करेंगे। साथ ही हम देखेंगे प्रकाशन, प्रेरणा, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या का क्या अर्थ है तथा बाइबल और उसके प्रत्येक अध्याय का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय श्रोता मित्र, आपका इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बाइबल अध्ययन की रूपरेखा देख रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमने पिछले अध्ययन में प्रकाशन के बारे में देखा, जिसमें हमने दो प्रकार के प्रकाशन अर्थात साधारण प्रकाशन और विशेष प्रकाशन पर विचार किया और हमने देखा कि इन प्रकाशनों के द्वारा परमेश्वर कैसे मनुष्यों पर प्रकट हुआ या मनुष्यों से संपर्क किया। साधारण प्रकाशन में परमेश्वर अपनी सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट किया ताकि उसकी रचना देखकर मनुष्य समझ जाए कि इसका रचयिता परमेश्वर है। और दूसरा है विशेष प्रकाशन, जिसमें परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आए और मनुष्यों के मध्य में रहे। इसके अलावा परमेश्वर ने पवित्र बाइबल के द्वारा अपने आप को मनुष्यों पर प्रकट किया, जो लिखित रूप में हमें दिया गया है। आज हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि प्रेरणा क्या है या ईश्वर प्रेरणा क्या है। लेकिन इससे पहले आइए हम सब परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रत्येक सुनने वाले को अपनी आशीष दीजिए। जो दुखी या निराश हैं उन्हें अपनी शांति प्रदान कीजिए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो श्रोता मित्रों, अब प्रकाशन के पश्चात आता है प्रेरणा, ईश्वर प्रेरणा, जो हमारा दूसरा महान विषय है। मैं व्यक्तिगत रीति से ऐसा विश्वास करता हूँ कि पवित्र शास्त्र, जिसे हम पूर्ण मौखिक आदेश और ईश्वर प्रेरणा के रूप में जानते हैं, जिसका अर्थ है कि पवित्र शास्त्र एक अधिकारपूर्ण विवरण या कथन है और इसमें लिखे गए प्रत्येक शब्द परमेश्वर के शब्द हैं और ये हमारे लिए और इस संसार में रहने वालों के लिए हैं। प्रिय मित्र, परमेश्वर के प्रकाशन को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर प्रेरणा का होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया परंतु उस प्रकाशन को सही रूप में लिखकर सुरक्षित नहीं रखा गया तो परमेश्वर के प्रकाशन पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं कि यह परमेश्वर का प्रकाशन है या नहीं है। इसलिए ईश्वर प्रेरणा का होना अनिवार्य है। ईश्वर प्रेरणा परमेश्वर के प्रकाशन को सही ठहराता है या पूर्ण निश्चितता देता है। ईश्वर प्रेरणा के संबंध में परमेश्वर के दास चार्ल्स सी रैरी ने इस प्रकार से कहा है, ईश्वर प्रेरणा मानव लेखकों के लिए परमेश्वर का संचालन था ताकि वे अपनी व्यक्तिगत स्वभाव का प्रयोग करें, और उन्होंने परमेश्वर के प्रकाशन को मनुष्यों के लिए संगठित किया और बिना किसी त्रुटि के लिखा और सुरक्षित भी किया। जी हाँ मित्रों, ईश्वर प्रेरणा ही है जो परमेश्वर के प्रकाशन को लिखने व सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ईश्वर प्रेरणा ही परमेश्वर के प्रकाशन का निश्चितता या गारंटी देता है। और बिल्कुल वही बात हम इस पुस्तक में भी पाते हैं। दो व्यक्ति जिसमें पौलुस अपनी आखिरी पत्री तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है और पत्रस भी अपनी आखिरी पत्री लिख रहा है, जिसमें दोनों ही बाइबल के प्रति कुछ ठोस बातों को लिख रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसके तीसरे अध्याय और 16 और 17 पद में पौलुस लिखते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। प्रिय मित्र, इन पदों पर ध्यान दीजिए। लिखा है, समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है, और यहाँ पर ईश्वर प्रेरणा का मतलब है कि परमेश्वर ने जीवनदायक श्वास फूंका। परमेश्वर ने इन लोगों के द्वारा अपनी बातें कही, जैसे वह पौलुस के द्वारा उन्हीं बातों को कहा जिसे वह कहना चाहता था, और पौलुस ने अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ा। पत्रस, जो यीशु का शिष्य था, इस बात को इस प्रकार व्यक्त करता है, दूसरा पत्रस की पत्री पहला अध्याय उसका 21 पद, दूसरा पत्रस की पत्री पहला अध्याय और उसका 21 पद, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। प्रिय मित्र, यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारे व प्रेरित किए गए तब उन्होंने कहा। विशप वेस्टकोट ने कहा कि विचार का शब्दों के साथ संयुक्त होना अनिवार्य है, जिस प्रकार की प्राण शरीर के साथ संयुक्त रहता है। और डॉक्टर केपर ने इसके संबंध में इस प्रकार से कहा, आप बिना किसी नोट्स के वाद्य यंत्र बजा सकते हैं या गणित बिना अंक के, जैसे विचार बिना शब्द के। प्रिय मित्र, इस कथन पर ध्यान दीजिए। यहाँ विचार ईश्वर प्रेरणा या प्रेरित नहीं है, यह शब्द है जो ईश्वर प्रेरणा या ईश्वर द्वारा प्रेरित है। इसे और अधिक सरलता से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक जवान लड़की थी जो संगीत प्रेमी थी और एक प्रचलित संगीत शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की हुई थी। एक बार उसे एक समारोह में गीत गाने के लिए बुलाया गया और उस समारोह में उसके संगीत शिक्षक भी आए थे। गीत गाने के पश्चात वह अपने शिक्षक से प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए व्याकुल थी, अर्थात वह अपने शिक्षक की प्रतिक्रिया जानना चाहती थी, परंतु वे उसे बधाई देने नहीं आए। तब उसने अपने एक मित्र से पूछा कि गुरुजी मेरे गायन या गाने के विषय में क्या कह रहे थे। उसके उस अच्छे मित्र ने उसे उत्तर दिया और कहा कि तुम्हारी संगीत स्वर्गीय थी। गायिका इस उत्तर पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके गुरुजी ने ऐसा कहा है, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, क्या वे यही शब्द थे जिसे उन्होंने कहा। यह अच्छी बात है, परंतु उसके मित्र ने यही समझा जो उसने अभी कहा। गायिका ने अपने मित्र से कहा कि मुझे वही शब्द कहो जिसे गुरुजी ने कहे थे। तब उसके मित्र ने कहा, गुरुजी कह रहे थे, वह एक अलौकिक शब्द था। निसंदेह इन दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है, एक अलौकिक शब्द या आवाज और एक स्वर्गीय आवाज। इसमें निश्चित शब्द का होना महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा विश्वास कीजिए कि पवित्र शास्त्र के शब्द ईश्वर द्वारा प्रेरित हुए हैं, केवल विचार मात्र ही नहीं परंतु शब्द भी। प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम के वचनों को लेकर शैतान से वाद विवाद किया है। इससे प्रमाणित है कि पुराना नियम ईश्वर प्रेरणा से लिखा गया है। व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय के 3रे पद के वचनों द्वारा यीशु मसीह ने शैतान पर विजय प्राप्त की। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 3 पद में हम इसे पाते हैं। जब यीशु इमाउस की ओर जाने वाले शिष्यों से वार्तालाप कर रहे थे, तो उसमें मूसा की व्यवस्था की पुस्तक, नबियों की पुस्तक और भजन की पुस्तक की चर्चा है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पुराना नियम ईश्वर प्रेरणा से लिखा गया है, जिसका समर्थन स्वयं यीशु मसीह ने किया है। यीशु मसीह ने इस बात पर जोर देकर कहा है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 18 पद में पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 18 पद, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी, जब तक कि सब कुछ पूरा न हो जाए, नहीं टलेगा। और कई बार यीशु मसीह कहते हैं, ऐसा लिखा है। प्रिय मित्र, शैतान झूठ बोलने के लिए प्रेरित नहीं हुआ, किंतु पवित्र बाइबल बताती है कि उसने झूठ बोला। कहने का मतलब है, सिर्फ शब्द ही ईश्वर प्रेरणा से दिया गया है, जिसे लेखकों ने लिखकर सुरक्षित कर लिया। परमेश्वर के दास मूसा ने निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय और उसके 1 पद में लिखा है, निर्गमन 20 उसके 1 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। जी हाँ, यह परमेश्वर ही था जिसने बोला और मूसा ने उन वचनों को लिखा जिसे परमेश्वर ने उसे लिखने को कहा। पिछले कई वर्षों में पवित्र शास्त्र के कई महत्वपूर्ण हस्तलिपियों की खोज की गई है, और इस हस्तलिपि के संबंध में बातें करें तो ब्रिटेन के सर जॉर्ज केनियन, जो ब्रिटेन संग्रहालय के पूर्व अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने इस प्रकार कहा, इन हस्तलिपियों के लिए धन्यवाद, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जो पवित्र बाइबल को पढ़ता है तो लिखे गए वचन के द्वारा वह शांति महसूस करता है, सिवाय कुछ अमहत्वपूर्ण मौखिक क्रमांतरण के। हाथ से लिखी गई प्रतिलिपि एक सामान्य पुस्तक के जैसे ही है। नया नियम, जिसमें हम भरोसा महसूस करते हैं, एक सबूत के तौर पर उतर आया है। आज हम इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि हमारे पास वो वस्तु है जो उस समय के हस्तलिपि के बहुत करीब है, और जो कुछ भी उस समय उसके नज़दीक था वह इसके नज़दीक है। मैं मौखिक पूर्ण ईश्वर प्रेरणा और निजी पंडुलिपि में विश्वास करता हूँ। मित्रों, दूसरे शताब्दी के चर्च फादर इरानियस ने लिखा है, पवित्र शास्त्र वस्तुतः परिपक्व है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा अधिक बोले जाते हैं। 5वीं शताब्दी में अगस्तीन ने कहा, इसलिए आओ हम अपने आप को समर्पण करें और पवित्र शास्त्र के अधिकार को स्वीकार करें जो हमें न तो हानि और न ही धोखा दे सकता है। और आगे स्पर्जन ने भी इस प्रकार से कहा है, मैं मौखिक पूर्ण और ईश्वर प्रेरणा के सिद्धांत पर कभी भी संदेह नहीं कर सकता। मैं इसे अटल और वास्तविक व्यवहार में देखता हूँ कि कैसे परमेश्वर के वचन के प्रयोग के द्वारा परमेश्वर आनंदित होते हैं। यहाँ पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है ताकि मनुष्यों की आत्मा को शांति व आशीष मिले। परमेश्वर इस पुस्तक से बातें करता है, हमारे हृदय से और हमारे जीवन से भी बातें करता है। प्रिय मित्र, प्रेरितों ने भी पूर्ण रूप से विश्वास किया कि पवित्र बाइबल ईश्वर प्रेरणा से लिखा गया है। पौलुस और पत्रस ने पूर्ण रूप से इसका समर्थन किया है कि धर्मशास्त्र ईश्वर प्रेरणा से लिखा गया है। इसके अलावा पुराना नियम में लिखी हुई बातों का नए नियम में पूर्ण समर्थन किया गया है। उदाहरण के लिए हम कुछ पुराने नियम की बातों को लेते हैं जो नए नियम में समर्थन के तौर पर उपयोग किए गए हैं, जैसे जल प्रलय जो उत्पत्ति 7 अध्याय में है, और मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 39 पद में भी है। इब्राहिम का जन्म जिसे हम उत्पत्ति 11 अध्याय और नया नियम में लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 34 पद में पाते हैं, और उसी प्रकार से आगे इब्राहिम की बुलाहट जो हमें उत्पत्ति 12 और 13 अध्याय में मिलता है, और नए नियम में इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय और 8 पद में। दानियल का सिंहों के मांद में या गुफा में डाला जाना दानियल की पुस्तक 6 अध्याय में, और नए नियम की पुस्तक इब्रानी 11 अध्याय उसके 33 पद में पाए जाते हैं। प्रिय मित्र, इसी प्रकार बाइबल में नगरों एवं राष्ट्रों तथा अन्य अनेक विषयों के लिए जो भविष्यवाणी की गई है उनकी पूर्ति होना ईश्वरीय वचन का जीवित प्रमाण है। चर्च फादर्स ने विश्वास किया कि धर्मशास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। रोम के क्लेमेंट ने भी बाइबल को परमेश्वर का वचन स्वीकारा। इरानियस ने धर्मशास्त्र के विषय में कहा है कि यह विश्वास का खंभा है। पुरातत्व विभाग के लोगों ने यह मान लिया है, अदन की वाटिका का स्थान मेसोपोटामिया की वादी में फरात तट पर था। उनका कहना है कि एक युग में यह इलाका सभ्यता का केंद्र बिंदु था। उत्पत्ति 5वें अध्याय में पाए जाने वाले दीर्घायु मनुष्यों, नूह के जल प्रलय, इब्राहिम का जन्मस्थान, सदोम अमोरा का नाश आदि बातें विलियम अल्ब्राइट एवं उनके साथियों ने खोज निकाली। इसके अतिरिक्त यरीहो नगर, शाउल, दाऊद, सुलेमान आदि राजाओं के विषय में और इसराइलियों की बाबुल की बंधुआई के विषय और अन्य बातें पुरातत्व शास्त्रियों ने पता लगा ली है। प्रिय श्रोता, आप जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप में से भी अनेक लोगों ने नूह के जहाज संबंधी जानकारी को पढ़ा और सुना होगा जो कुछ ही समय पूर्व दी गई थी। अर्थात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग भी पवित्र बाइबल के समर्थन में है कि यह ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा लिखा गया है, क्योंकि जो कुछ भी लिखा है वह सत्य है। इसका भी प्रमाण है जो हमें पवित्र शास्त्र के माध्यम से ही मिलता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कई बार पुराने नियम की पुस्तकों के कई पदों को महत्व दिया और उसे कहकर लोगों को व शिष्यों को इस बात से अवगत कराया कि यह वचन पहले ही परमेश्वर ने पुराने नियम में प्रकट कर दिया है। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 44 पद, लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 44 पद। तब यीशु ने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी, कि उन सब बातों का जो मूसा की व्यवस्था में, नबियों तथा भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी गई थी, पूरा होना अनिवार्य है। इस पद के अनुसार प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को स्मरण दिलाया कि उसके विषय में जो भी बातें पुराने नियम में, मूसा की व्यवस्था में लिखी हैं, नबियों की पुस्तक में और भजन की पुस्तक में, उन सब का पूरा होना अनिवार्य था। प्रभु यीशु के शिष्य उसकी उस शिक्षा को नहीं समझ पाए कि यीशु को मरना है और पुनः तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है, जिसके बारे में पुराने नियम की पुस्तकों में कही गई थी। किंतु यह भविष्यवाणी ईश्वरीय प्रेरणा से लिखी गई थी, इसलिए इसका पूरा होना निश्चित था। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने वक्तव्य में तीन मुख्य बातों को सामने ला रहे हैं, कि पुस्तक का लिखा जाना, भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी जो उसके बारे में है, और उसका पूर्ण होना, पूरे पुराने नियम को ईश्वरीय प्रेरणा की पुस्तक होने का अधिकार प्रदान करती है। जब यीशु मसीह अविश्वासी यहूदियों से अपने परमेश्वर के पुत्र होने के विषय में वाद विवाद कर रहे थे, तब उन्होंने भजन संहिता 82 और उसके 6 पद का हवाला देकर उन्हें स्मरण दिलाया, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और उसके 34 और 35 पद में पाते हैं। यूहन्ना 10 उसके 34 और 35 पद में पाते हैं, जहां उसने यह भी कहा है कि पवित्र शास्त्र का खंडन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि पवित्र शास्त्र को किसी दबाव के द्वारा उसके प्रेरणा को कम या खाली नहीं किया जा सकता, और न ही उस पर जबरदस्त गलतियां थोपने या लगाने के द्वारा गलत साबित किया जा सकता है। प्रभु यीशु सदूकियों को पुनरुत्थान के बारे स्मरण दिलाते हुए निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 6 पद को उनके सामने रखते हैं और थोड़ा बढ़ाकर उनसे कहते हैं, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ, जो मुर्दों का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि पुराने नियम की पुस्तक ईश्वर प्रेरणा द्वारा नहीं लिखी गई है, तो प्रभु यीशु का उनके साथ वार्तालाप या विवाद करना व्यर्थ है। परंतु यदि प्रत्येक शब्द ईश्वर प्रेरणा पाकर लिखे गए हैं, तब तो उसके कथन में वजन है, अर्थात दम है, अर्थात सत्यता है। प्रभु यीशु का वक्तव्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में है। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 6 पद जिसमें लिखा है मैं हूं, यहां नहीं लिखा गया है मैं था, लेकिन मैं हूं। इस पद से यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है। प्रिय मित्र, इसी प्रकार से बहुत सारी बाइबल के पद हैं जो पुराने नियम में पाए जाते हैं, और यीशु मसीह ने उसे वक्तव्य में उसका प्रयोग किया। जैसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 8 अध्याय 3 पद, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय उसके 13 और 16 पद, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 4 पद और 7 पद और 10 पद में मिलते हैं। इसी प्रकार भजन संहिता 118 अध्याय 22 पद, नए नियम की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 42 पद में यीशु ने प्रयोग किया है। प्रिय मित्र, विद्वानों का ऐसा मानना है कि यदि पुराने नियम के ये वचन परमेश्वर प्रेरणा से नहीं लिखे जाते, तो यीशु इन वचनों को कदापि प्रयोग न करते और न ही कोई शिष्य इन वचनों का प्रयोग करता। परंतु यहाँ पर हम पाते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु पुराने नियम के पुस्तकों से उन वचनों का हवाला देकर सदूकियों और फरीसियों को स्मरण दिला रहे हैं कि जो उनके बारे में लिखे गए हैं, इतना ही नहीं, यीशु के शिष्य भी पुराने नियम के पुस्तकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि पवित्र शास्त्र ईश्वर प्रेरणा द्वारा लिखा गया है, जो जीवन को सुधारने, मार्गदर्शन देने व शिक्षा के लिए उपयुक्त है। इसे पौलुस ने दूसरे तीमुथियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 16 पद में तीमुथियुस को लिखते हुए व्यक्त किया है कि पवित्र शास्त्र ईश्वर प्रेरणा से लिखा गया है। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी, प्रभु यीशु का उन वचनों का प्रयोग करना, शिष्यों का उन वचनों पर विश्वास व स्वीकार करना, पुरातत्व विभाग का प्रमाण देना, ये सब गवाहियां पवित्र शास्त्र के ईश्वरीय प्रमाण होने का सबूत देते हैं कि यह सत्य है और विश्वास योग्य है कि पवित्र शास्त्र ईश्वर प्रेरणा पाकर मनुष्यों ने इसे लिखा। प्रिय मित्र, मैं समझता हूं कि इतने सबूत हम सबके समझने के लिए काफी हैं कि हम सब परमेश्वर के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें। मित्रों, आज हम इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले अध्ययन में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। लेकिन आप इस कार्यक्रम के बारे में अपने मित्रों को अवश्य बताएं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है? यदि आपके पास कोई प्रश्न हो या प्रार्थना निवेदन हो तो आप अवश्य ही लिखें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर व प्रार्थना कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। जो बीमार और निराशा में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। कृपया आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बाइबल अध्ययन करने में मदद किया। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई और बहनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, जो निराशा में हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके उस सामर्थ्य नाम से उन सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके सामर्थ्य नाम से आज्ञा देते हैं कि बीमारी हमारे भाई हमारी बहन को छोड़ दे। अभी इसी वक्त यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, सिर दर्द, पेट दर्द, टीवी, कैंसर, चर्म रोग, शुगर की समस्या, हृदय की समस्या यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छूकर उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें, उनके सब पापों को आप क्षमा करें और उन्हें एक नया जीवन प्रदान करें ताकि वे आपके नाम की महिमा करने पाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
शालोम इंटरनेशनल गॉस्पल म्यूजिक मिनिस्ट्री आभार मानता है प्रभु यीशु का, जो हम आपके सामने ये पुकार वॉल्यूम 8 को सीडी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका श्रेय मात्र उस महान प्रभु यीशु मसीह को जाता है, जो इस जग के तारनहार है। आमीन।